जयधवला पुस्तक चौधरी लेक्चर नंबर 12 ओम
नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंता नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाऊं उवसमिदसयलदोषे उवसंतकसाय वीरायन्ते उवसामये पणव्यूं कसाय उवसामणं मोक्षम्।
यह श्री वीरसेन आचार्य की जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंजर भट्टारक तथा यति उषव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चौदहवीं पुस्तक में अभी हम चारित्र मोह की उपशामना नाम का अर्थाधिकार देखते हुए पृष्ठ संख्या 68 पर आ गए। 68 हमने ये बात देखी थी कि जो उपशम श्रेणी से उतरता है जी, उसके बाद पहले तीन लोगों का आकर्षण करता है, वहाँ से बात शुरू की थी और उसकी गुणश्रेणी बनाता है। जब हमने पहले देखा था तो उसमें तभी अंतर पूरता है ऐसा हमें लगा, परंतु ये बात सही नहीं है। क्योंकि आपने भी देखा, हाँ ये मैंने भी लब्धि सार यहाँ निकाली है पुस्तक। हाँ पहले हमने क्या देखा कि गुण श्रेणी करता है तो अंतर भी पूर देता है, क्योंकि ऐसा कहीं अंतर संबंधी एक वाक्य आया था, परंतु हाँ अंतर पूर्ता ऐसे शब्द आया था, परंतु जो प्रथम स्थिति पहले तो गैप बनाई थी, ग्यारहवें गुणस्थान में तो अभी केवल गैप ही थी, प्रथम स्थिति कुछ नहीं थी और द्वितीय स्थिति में ये ऊपर निषेक पड़े, सभी कर्म पड़े हैं। यहाँ ग्यारहवां गुणस्थान चल रहा है, ऊपर अंतर चल रहा है। अभी क्या होगा, वहां से परमाणु, पहले कौन से परमाणु, तो लोक के परमाणु नीचे आएंगे, अंतर रखेंगे कुछ और उसके नीचे यहाँ गुणश्रेणी रूप से रचना होगी। संज्वलन लोक के उदय के समय से और बाकी उदय आदि के ऊपर, यहाँ तो ऐसा लिखा था, हमने देखा था कि सूक्ष्म सांप्राय के प्रथम समय में अनिवृत्ति अपूर्वकरण जितना गुणश्रेणी बनाता, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म सांप्राय के लिए कृष्टि की रचना होती है,
नहीं हमने देखा था ज्ञानावरणियों में गुणश्रेणी रचना, ये
उसकी बात मत निकालो, ज्ञानावरण ज्ञानावरण की बात ही नहीं है।
नहीं वहाँ पे गुणश्रेणी की रचना किसकी होती है, अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण और शादी,
वो होने दो। हाँ। उसकी बात नहीं, यहाँ पर मोहनी की बात चल रही।
हाँ।
तो मोहनी में कितनी होती है निकालो, यहाँ पर सूक्ष्म सांप्राय का पहला समय पेज के आसपास कहीं होगा, दो प्रकार के लोग का उतना ही निक्षेप होता है। 49 पेज नहीं, यहाँ बराबर है। उदयादि गुण श्रेणी करता है, और वो कितना है तो वहाँ पर सूक्ष्म सांप्राय से कुछ अधिक है। 49 पेज यानी ये अंतर संबंधी क्लैरिटी इसमें जो नहीं हो रही थी, वो कल हमने पढ़ा तब ख्याल में आया कि अभी अंतर उसमें पूरा नहीं है, आवली प्रमाण जाता है। देखो ये शुरू से देख रहे हैं हम, उतरने वाला सूक्ष्म सांप्राय के पहले समय में है, अभी लोभ की उदीर्णा समाप्त, सॉरी उदय, सॉरी उपशम उपशम समाप्त हो गया, लोक का उपशमित किया हुआ उसका काल समाप्त हुआ, अब वो उदीरित होगा, उसका अपकर्षण होगा। उदीरना सबके लिए नहीं कहेंगे, जो उदीरना उसी को कहते हैं जिसका उदय होता है। तो अभी यहाँ पर क्या पोजीशन है, संज्वलन लोभ का उदय चलेगा, वो भी पृष्टि वाला, और अन्य दो उदयावली के ऊपर रहेंगे। देखो ये बीच वाला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे, 113 नंबर का। उसके अर्थात गिरने वाले सूक्ष्म सांप्रायिक जीव का जो कृष्टिगत लोभ का वेदन काल है वह अंतर्मूर्त काल प्रमाण है। सूक्ष्म सांप्रायिक का वेदन काल मैंने सूक्ष्म सांप्रायिक का काल, उससे कुछ अधिक काल प्रमाण इसका गुणश्रेणी निक्षेप जानना चाहिए। कुछ अधिक यानी एक अवली ज्यादा। यहाँ कृष्टियों की जो रचना हुई है उसकी गुणश्रेणी रूप से रचना हुई है, उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी निक्षेप हुआ है, तो वो उसका प्रमाण कितना है, तो सूक्ष्म सांप्राय का काल प्लस एक अवली। यहाँ विशेष का प्रमाण एक अवली मात्र ग्रहण करना चाहिए। अन्य दो प्रकार के लोभ का भी इतना ही गुणश्रेणी निक्षेप होता है, किंतु उसे उदयावली के बाहर ही निक्षिप्त करता है। ये बात यहाँ हो गई। दो प्रकार के लोभ का उतना ही निक्षेप होता है, वो बात उन्होंने बता दी थी। वहां तो उन्होंने ज्ञानावरणादि का अनिवृत्ति अपूर्वकरण के काल से कुछ अधिक है वो बता दिया था। उसके बाद ये जब तक अंतर नहीं पूरता 51 पृष्ठ पर आई गई थी बात। देखो तीन प्रकार के मिला सूत्र पहले पढ़ेंगे, 51 पेज पर। तीन प्रकार के लोभों का उतना उतना ही निक्षेप होता है, तो शंका पूछी गई कि यह कैसे होता है, तो समाधान में जब तक अंतर को नहीं भरता तब तक यथावसर अपकर्षित होने वाली मोह प्रकृतियों का अवस्थित ही गुणश्रेणी निक्षेप होता है, ऐसा परम गुरु का उपदेश है। यानी जब यहाँ अंतर पूरता ही नहीं है, यहाँ अंतर कब पूरेगा, जब क्रोध का उदय आएगा, जिस कषाय के उदय सहित श्रेणी चढ़ा है उसका उदय जब शुरू होगा तब अंतर को पूरेगा। ये इससे अपने में रिभ्रमणा हो गई। यानी यहाँ पर क्रोध के उदय होने पर अंतर पूरेगा, जिस कषाय के उदय से चढ़ता है ना उस कषाय का उदय होने पर अंतर को पूर देता है। यानी यहां उसके अवस्थित गुणश्रेणी है। उसके बाद का सूत्र पढ़ेंगे, उसी समय तीन प्रकार का लोभ एक समय में प्रशस्त उपशमना से अनुपशांत हो जाता है, तभी तो उसका अपकर्षण हुआ ना। अनुपशांत तो होने प्रशस्त उपशमना मिट गई, यानी अभी जो उपशमित हुए थे वो अभी वहां से छूट गए, तभी तो उसका अपकर्षण हुआ, इसकी नीचे रचना हुई वगैरह वगैरह। तो वहाँ कितना स्थितिबंध होता है वो बात हम छोड़ेंगे, थोड़ा आगे आते हैं हम। यानी ये सूक्ष्म सांप्राय के काल में कृष्टियुगत उदय चलेगा। उसके बाद 55 पेज निकालना, लास्ट लाइन। कृष्टि वेदक के काल के व्यतीत हो जाने पर, यानी सूक्ष्म सांप्राय का काल पूर्ण हुआ, प्रथम समयवर्ती बादर सांप्रायिक हो गया, यानी नौवा गुणस्थान में आ गया। यानी यहाँ लोभ का बंध शुरू हो जाएगा और उसका अनानुपूर्वी संक्रमण चालू हो जाएगा। वो भी शक्ति अपेक्षा कहाँ है, अन्य दूसरा किसी का बंध ही नहीं है, परंतु दो लोभ है वो संज्वलन लोभ में संक्रमित होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ से उदय किसका चलेगा, वेदन किसका, स्पर्धक गत लोभ का, यानी बादर लोभ का। पृष्ठिया सब नष्ट हो जाएगी, और यहाँ जो उदयावली में जितनी कृष्टियाँ हैं
एक समय में
वो तो स्पर्धक गत होकर उदय में आएगी। वैसे तो रचना तो पूरी ये तो अवस्थित की है, ऐसा नहीं कि आवली में ही है, बाकी जो ऊपर की कृष्टि वो स्पर्धगत होती चली गई थी। यहाँ जो उदया कृष्टि रूप जो हुए थे आवली में कृष्टि है वो एक एक करके स्पर्धक रूप होकर उदय में आएगी, और बाकी यहाँ तो जो सारा ही बादर स्पर्धगत उदय चलेगा।
नहीं, वो एक ही समय में यहाँ पे लिखा है ना, ये 133 पॉइंट पे लिखा है, क्योंकि उन सब का एक समय द्वारा ही प्रकृत स्पर्धक रूप से परिणाम देखा जाता है।
वही तो,
तो एक ही समय में सब पुष्टि स्पर्धक रूप हो
जाती।
पहले समय में
पुष्टियाँ बनने के लिए अंतर्मुहूर्त लगा था, अब यहाँ एक ही समय में
बादर का उदय हो गया,
बढ़कर सब स्पर्धगत हो गया,
द्वितीय स्थिति में और ये उदय वाली स्थिति में।
हाँ, केवल वो जो आवली में था वो स्पर्धगत नहीं हुआ था, वो एक एक समय का थ्यूक संक्रमण द्वारा संक्रमित होगा। ये बात ऐसा है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब वो स्थिति बंध कितना होता है उसको थोड़ा गौण करेंगे हम। जब माया का आकर्षण होता है वहां चलेंगे, 61 पेज में। तदनंतर समय में तीन प्रकार की माया का आकर्षण करके माया संयोलन की उदयादि गुणश्रेणी करता है, तथा अन्य दो प्रकार की माया की आवली बाह्य गुणश्रेणी करता है। यानी यहाँ पर सभी का जो गुणश्रेणी निक्षेप है वो समान हो जाएगा, 6 का। अभी 6 हुए, पहले 3 लोग थे, अब 3 माया आ गई। उदय वाली है वो नीचे से उदय के समय से लेकर उसकी गुणश्रेणी होगी, और बाकी जो 5 है वो उदयावली के ऊपर से गुणश्रेणी रूप से निक्षेप होगा उसका।
हमने आगे इसे पढ़ा कि लोक का जब उदय होगा सूक्ष्म लोक का, तभी सूक्ष्म लोक का काल से एक अवली अधिक समय वाला उसका पहली स्थिति बनती है,
बनती है।
पीछे जब भी बादर लोक का उदय हो जाएगा तभी उसका भी बादर लोक का जब उदय है उतनी स्थिति प्लस एक आवली होगी। अभी यहाँ पे ये माया की जो आकर्षणों के नीचे परमाणु आए हैं उसके साथ लोक का भी प्रथम स्थिति होगी कि नहीं होगी?
होगी ना, प्रथम स्थिति ऑलरेडी है।
हाँ, एक आवली
बढ़ेगी, 3 बार अवस्थित गुणश्रेणी होती है। ये इसमें जो नहीं लिखा है ये लब्धि सार में लिखा है। हाँ, पहले कितना था? लोक वेदक काल प्लस एक आवली। जब माया का उदय शुरू हो गया तो माया का वेदक काल प्लस एक आवली, और वो भी गुणश्रेणी अवस्थित हो गई। अभी पहले लोभ के वेदक काल तक अवस्थित थी, अब फिर बढ़कर माया वेदक काल जितनी हो गई, अब वो भी माया वेदक काल में थ्रू आउट अवस्थित रहेगी। फिर मान वेदक काल में और बढ़कर फिर अवस्थित गुणश्रेणी चलेगी। बाद में जब क्रोध वेदक आएगा तब गलितावशेष हो जाएगी। देखो ये बात जितनी क्लियरली लब्धि सार में लिखी है ना उतनी वहां नहीं है। और वो अंतर को लांग कर करता है ये इतनी बात इसमें और स्पष्ट रूप से लिखी है। हाँ देखो, 312 नंबर की गाथा में इसका टीका में लिखा है, यानी कभी उपशांत कषाय से जब सूक्ष्म सांप्राय में प्रवेश किया था, वहां तो नीचे अंतर ही अंतर था, कुछ नहीं था वहां पर, उस समय उसने कैसी रचना की उसकी बात यहाँ लिखी। तो कहते कि गुणश्रेणी आयाम बनाया उसने, और वो कितना ही सूक्ष्म सांप्राय से एक आवली ज्यादा है। वहां कहते वहां उदय रूप जो संज्वलन लोभ, ताकि यानी उसकी द्वितीय स्थिति में, मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन करके पढ़ रही हूँ, द्वितीय स्थिति में रहने वाले द्रव्य को अपकर्षण करके, अभी यहाँ प्रमाण बताया उसको पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर, एक भाग को उदय रूप प्रथम समय से लेकर गुण श्रेणी आयाम के अंत निषेक तक असंख्यात गुणाक्रम से निक्षेपण करता है। हाँ, तो कहते ये जो गुणश्रेणी रूप का जो अंतिम निषेक है, यहाँ जो अंतिम निषेक है गुणश्रेणी का अंतिम निषेक है, उसके ऊपर पाई ये है अंतरायाम, यानी उसके ऊपर जो अंतरायाम पाया जाता है, यानी अंतर पाया जाता है, उसको छोड़कर उसके ऊपर जो द्वितीय स्थिति है, यानी ये जो अपकर्षण किया द्रव्य टोटल परमाणु में, टोटल निषेकों में से अपकर्षित किया जाएगा, वो कहाँ दिया जाएगा, तो एक भाग की गुणश्रेणी बनेगी और बहुभाग ऊपर दिया जाएगा, कैसे, क्षय घटते क्रम, यहाँ गुणश्रेणी रूप से असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, और द्वितीय स्थिति में पहले में ज़्यादा दूसरे में कम, फिर और कम, एक क्षय 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 घटते 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 ऊपर दिया जाएगा। उत्कर्षण नहीं कहते इसको, ऊपर यानी ऊपर जाएगा ना, ये सब ऊपर से ही सब आया है और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रत्येक निषेक में से अपने अपने नीचे ही जा रहे, ऊपर नीचे से ऊपर कुछ नहीं जा रहा, द्वितीय स्थिति में से सब में से कुछ कट हुआ माल, उसमें से एक भाग नीचे दिया और एक भाग ऊपर दिया, बहुभाग ऊपर दिया, ऊपर तो अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण है और नीचे तो अंतर्मूर्त प्रमाण है, यहाँ भले असंख्या तो भाग दिया फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा आया, और ऊपर बहुत ज़्यादा माल दिया यानी बहुभाग दिया, फिर भी वहाँ निषेक तो असंख्यात पड़े हैं अंत कोड़ा कोड़ी सागर जितने, तो उसमें तो किस तरह से दिया, एक एक क्षय घटते और यहाँ असंख्यात गुणा बढ़ते।
इसी समय उदय भी चालू हो गया।
हाँ हाँ, उसी समय उदय चालू,
हाँ, तो उदय चालू हो गया तो अपकर्षण नहीं होगा फिर, अरे उत्कर्षण नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा,
क्योंकि बंद भी चालू हो गया उदय भी चालू हो गया, तो उत्कर्षण होगा ना,
उत्कर्षण तो हो सकता है जब नया बंद है।
हाँ।
अभी उसकी तो यहाँ बात नहीं है, यह तो अभी नई रचना हुई उसकी बात चल रही है। देखो जो उदय रही तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोग, उसकी द्वितीय स्थिति में जो द्रव्य रहता था उसको अपकर्षण करके उदयावली के बाहर प्रथम समय से लेकर गुणश्रेणी आयाम के अंत तक, यानी इसको उदयावली को छोड़ो, उदयावली को छोड़कर यहाँ के प्रथम निषेक से ये गुणश्रेणी का जो अंतिम समय वहां तक असंख्यात गुणाक्रम सहित, और उसके ऊपर अंतरायाम को छोड़कर द्वितीय स्थिति में क्षय घटते क्रम से पूर्ववत निक्षेपण करता है, यानी ये अंतर को छोड़कर ये बात होती है, ये क्लैरिटी यहाँ ज्यादा आ गई। आयु और मोह बिना छह कर्मों के द्रव्य को अपकर्षण करके, यानी ज्ञानावरणादि अन्य छह में, उसको पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर, एक भाग को फिर से पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर, एक भाग उदयावली में बाकी गुण श्रेणी में, और इसका आयाम कितना है, तो सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्व करने का मिलाया हुआ कालते की छवि है। ये बात फिर बैठती है, तीनों के काल से विशेष अधिक यहाँ पर लिया सूक्ष्म सांप्राय, जब अनिवृत्तिकरण में आएगा तब कहेंगे अनिवृत्ति और अपूर्वकरण से कुछ अधिक है, सूक्ष्म सांप्राय में केवल अनिवृत्ति और अपूर्वकरण से ज्यादा ये कथन नहीं घटित होता है, कुछ अटपटा लग रहा है। यहाँ लिखा है सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्व करने का मिलाया हुआ कालते की छदिक प्रमाण लिए गलितावशेष रूप है, कभी सूक्ष्म सांप्राय में जब अनिवृत्तिकरण में आएगा तो अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण और कुछ अधिक करेंगे। और वहां हम स्थिति बंधापसरण कहते ना, ऊपर जाते समय उतरते समय स्थिति बंधोत्सरण कहेंगे, उत्सरण यानी स्थिति बंध बढ़ता हुआ है। अब ये जो गुणश्रेणी आयाम जो तीन बार अवस्थित होता है, इसे यहाँ लिखा है देखो,
लोग मान माया तीनों का उदय के।
ये जो हमने दूसरी भी बात की थी, पहले समय में जो उदय रूप थी अनुदय रूप थी, उसको यहाँ संदृष्टि देकर समझाया है। ये उदय रूप निषेक है, उसमें जगन्य कृष्टि से उत्कृष्ट कृष्टि तक सारे परमाणु बहुत सारे हैं, अलग अलग कृष्टियां हैं उसमें। तो कृष्टियां मान लेते 1000 है, उसमें से नीचे की कुछ छोड़ो ऊपर की कुछ छोड़ो, बीच की 800 कृष्टियां उदय रूप है। और 200 में उन्होंने किस तरह से किया है कि ऊपर 120 लिए, नीचे 180, केवल 80 लिया जगन्य की ओर की, 80 अनुदय रूप की, उत्कृष्ट की ओर की 120 अनुदय रूप की। दूसरे समय में उत्कृष्ट की ओर बढ़ेगी, इसको 5 का भाग देना। ये भी कैसे निकाला, 1000 को 5 का भाग दिया था तो 200 लिया, तो 200 अनुदय रूप की, तो 200 को फिर उन्होंने 5 का भाग, 5 का भाग दिया था तो 40 के डिफरेंस से कुछ ऐसा बहुभाग एक भाग ऐसा हुआ था वहां पर। यानी यहाँ 5 भाग किए थे उसके 200 के, और यहाँ 3 भाग दिए थे, यहाँ 2 भाग दिए, तो ये घटित हुआ। अब दूसरे समय में क्या होगा, इसकी ओर शिफ्ट होगा ऊपर की ओर, तो 120 को फिर 5 से भाग देना, कितने आए,
24
आए। तो यहाँ 24 उदय रूप होगी, अनुदय में से उदय रूप होगी, और यहाँ पर इसको 5 का भाग दे तो 16, तो 16 यहाँ अनुदय रूप हो
जाएगा,
ये 96 अनुदय रही, और 120 में से 24 गई,
96 वहाँ पर दे।
हाँ, तो कहते कि यहाँ 24 बढ़ी उदय रूप हुई नहीं, और 16 अनुदय रूप रही, यानी 8 ही एक्स्ट्रा उदय रूप हो गए। यहाँ 800 थी वो 808 हो गई। अरे ये इधर शिफ्ट होता गया, तीसरे समय में ऐसा और ये इधर इधर शिफ्ट हो गए, अनुभाग में कृष्टि में, क्योंकि हर समय वो अनुभाग बढ़ता हुआ उदय में आता है। तो ऐसा कृष्टि का जो चलेगा कितने समय तक, तो सूक्ष्म सांप्राय के जितने समय तक ऐसी बात चलेगी। उस समय क्या हो रहा है, वो सारे कृष्टियां हैं वो स्पर्धक रूप से परिणमित होती है। हमने देखा एक ही समय में वो स्पर्धक रूप हो जाती है, एक्सेप्ट उच्चिष्टावली रह जाती है। यानी अनिवृत्ति के इनके पहले समय में
सभी
जो सूक्ष्म कृष्टि है वो उच्चिष्टावली के निषेक को छोड़कर, बाकी सब जो प्रथम स्थिति में गुण श्रेणी में पड़े थे, ऊपर भी पड़े थे, वो सब स्पर्धक रूप हो जाते हैं। यानी अनंत गुना उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और ये कृष्टि के जो निषेक रहे उच्चिष्टावली में नीचे, बाकी एक ही समय में स्पर्धक रूप हो गया। अब इनका क्या होगा, एक एक समय में स्पर्धक रूप होकर उदय में आएंगे, उसको स्थूप संक्रमण कहेंगे। इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, लोग वेदक काल के अनंतर, माया वेदक काल के प्रथम समय में, ये उतरने वाले की बात चल रही है। तो वहां 3 माया के द्रव्य को अपने द्वितीय स्थिति में से अपकर्षण करके उदय रूप जो संज्वलन माया है उसका उदयावली से लेकर, यानी उदय के समय से लेकर, और अन्य का उदयावली के ऊपर से गुणश्रेणी निक्षेप होगा। वहां पर आवली से अधिक माया वेदक काल प्रमाण अवस्थित आयाम विषय गुण श्रेणी करता है। अब ये आयाम सब में चलेगा,
लोभ
में भी और माया। पहले लोभ के प्रमाण मात्र उसका लोभ वेदक काल में आवली अधिक, इतना लोभ का उन्होंने किया था, अब माया वेदक काल प्लस आवली और वो अवस्थित रहेगा थ्रू आउट माया वेदक काल में। जब मान का उदय शुरू हो जाएगा तब मान वेदक काल प्लस आवली और एक बार अवस्थित गुण श्रेणी करेगा। जब पूरा का पूरा नहीं, वो अपने रूप से भी रहता है, नहीं
रहेगा
उदय रूप। हाँ उदय रूप होगा, उदय रूप होगा।
यहाँ पे जो संक्रमण अनानुपरी संक्रमण बताए वो पहली स्थिति में होगा तो दूसरी स्थिति में भी चालू
होगा। उदयावली के ऊपर सर्वत्र
सर्वत्र
संक्रमण उदयावली के ऊपर सर्वत्र होगा।
बराबर है, पर द्वितीय स्थिति में भी
कुछ परमाणु इसमें से उसमें, उसमें से इसमें, दोनों तरफ हो जाते हैं। अब यहाँ ये बात लिखी थी यानी तीन बार अवस्थित गुण श्रेणी करता है, इसी बात स्पष्ट रूप से इसमें लिखी थी। चौथी बार जो करेगा उसको पूरा लोभ का ही बताया। देखो यहाँ बात है, यहाँ एक लिखी बात कि सूक्ष्म संप्रदाय से लेकर अपूर्वकरण के अंत तक ज्ञानावरण आदि का गलितावशेष गुण श्रेणी आएगा। और इतना विशेष है, सूक्ष्म सांप्राय के प्रथम समय से लेकर कितने काल तक मोह का गुण श्रेणी आयाम अवस्थित है, पश्चात और कर्मों के गुण श्रेणी आयाम के समान मोह का भी गुण श्रेणी आयाम गलित अवस्थित, वो तो नीचे आने पर होता है क्रोध का उदय होने पर। यहाँ कहते हैं तीन स्थानों में बढ़कर अवस्थित गुण श्रेणी आयाम होता है। आपके प्रश्न का उत्तर आया, लोक वेदक से माया वेदक बड़ा होगा, माया वेदक से मान वेदक बड़ा, तभी तो बढ़कर गुणश्रेणी आयाम हुआ है। तो तीन स्थानों में बढ़कर अवस्थित गुणश्रेणी आयाम होता है, ये गाथा 344 की टीका में लिखा है। उतरने वाले सूक्ष्म सांप्राय के प्रथम समय से लेकर अवस्थित गुणश्रेणी आयाम ही है। पुनश्च स्पर्धक रूप बादर लोक के द्रव्य के अपकर्षण में एक बार गुणश्रेणी आयाम बढ़कर बादर लोग वेदक काल पर्यंत अवस्थित रहे। आपने बताया वो बता बराबर है, सूक्ष्म सांप्राय में एक बार अवस्थित है, बादर लोग का अपकर्षण हुआ तब एक बार अवस्थित है, माया के द्रव्य का अपकर्षण करके दूसरी बार बढ़कर, एक बार कब बढ़ा बादर लोग के समय एक बार बढ़ा, फिर दूसरी बार कब बढ़ा माया वेदक काल के बाद दूसरी बार बढ़ा, माया का वेदक काल पर्यंत अवस्थित गुणश्रेणी आयाम रहता है, फिर मान के द्रव्य का अपकर्षण करके तीसरी बार बढ़कर मान वेदक काल पर्यंत अवस्थित गुणश्रेणी आयाम रहता है। यानी ये बातें यहाँ ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, वो बढ़ रहा है उसका, यानी जो थ्रू आउट वो वेदक काल है तब तक वो अवस्थित रहेगी गुणश्रेणी। इस तरह तीन बार अवस्थित गुणश्रेणी आयाम होता है, यानी बढ़कर होता है। पहले सूक्ष्म सांप्राय में किया था, बादर लोक का अपकर्षण हुआ तभी एक बार हुआ बड़ा, फिर माया के समय एक बार बड़ा और मान के समय एक बार बड़ा, चौथी बार क्रोध का अपकर्षण में बढ़कर अपूर्वकरण के अंत तक अन्य कर्म के समान मोह का भी गलितावशेष होता है। वहां अवस्थित नहीं रहता, बढ़ता तो है परंतु उस समय अभी अपूर्वकरण का जितना काल शेष है, अनिवृत्ति का जितना शेष है उतनी उसकी उसका आयाम है, परंतु वो गलितावशेष है। गलितावशेष का अर्थ ऐसा है कि अभी वो अवस्थित, अवस्थित में क्या होता है, एक निषेक गल जाए ऊपर के एक निषेक में गुणश्रेणी रूप से निक्षेप होता है। अब यहाँ क्या होगा, भले एक गल जाए तो भी ऊपर जितने निषेकों में गुणश्रेणी रूप से देते थे उतने ही निषेकों में अभी उसका आयाम उतना का उतना नहीं है, वो तो एक एक समय से कम होता चला जाएगा। तो कल हमने अन्य कर्मों में जो देखा था ना, सूक्ष्म सांप्राय के प्रथम समय में शेष कर्मों में
सूक्ष्म सांप्राय प्लस अभिवृद्धिकरण थोड़ा सा पूर्वकरण
देखो 50 पेज पर आयु सूत्र में आयु कर्म को छोड़कर सूक्ष्म सांप्रदाय के प्रथम समय की बात चल रही नहीं है कि अनिवृत्तिकरण की चल रही है। पचास पेज पर जो लिखा है
नहीं सूक्ष्म सांप्रदाय की बात है।
हाँ तो वहाँ जो अन्य कर्मों में जो काल है गुण श्रेणी का वो सूक्ष्म सांप्रदाय अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण ये तीनों को मिलकर होगा। ये अपने समझने के लिए लिखना सूक्ष्म सांप्रदाय भी उसमें चाहिए। और उसमें रेफरेंस है लब्धी सर पेंसिल से लिख के रखो वहां पर 50 पेज पर। हाँ अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण प्लस सूक्ष्म संप्रदाय उसमें एक अवली अधिक
विशेष अधिक बताया
वही तो विशेषता प्रमाण
नहीं मैं क्या पूछ रहा है तो पांचवें गुणस्थान से गुणश्रेणी निर्धारण चालू हो जाती है
अभी वो अन्य अन्य नई गुणश्रेणी बनेगी।
अच्छा वहाँ पे तो ये गलिताओं ये खत्म होगी पीछे नहीं बनेगी कि वहाँ पे
जहाँ योग्य जो यहाँ बात आएगी अभी क्रम से जो हम जा रहे हैं ये अनेक अलग अलग गुणश्रेणी अलग अलग जगह बताए बनती है उसका निक्षेप जो है वो अलग अलग प्रमाण वाला होता है कहीं गलितावशेष है कहीं अवस्थित है उसका आयाम अलग अलग है तो हो सकता है सत्ता में ही दो तीन अलग अलग गुण श्रेणियां पड़ी हो। समझ में आती है ना बात। अभी जो पढ़ा तो हाँ लब्धिसार का गाथा 312 यहाँ पेज 50 50 पेज पर जो सूत्र हमने पढ़ा आयु कर्मों को छोड़कर शेष कर्मों का गुणश्रेणी निक्षेप यहाँ पर एक शब्द डालो सूक्ष्म सांप्राय कॉमा लगाओ अनिवृत्ति और अपूर्वकरण के काल से विशेष अधिक होता है। इसके लिए गाथा का हमने अभी रेफरेंस भी दिया था
गाथा 312 ना
312 थी ना अभी मैंने कौन सी पढ़ी
थी 312 बताया
अन्य कर्मों की बात वही तो बताई थी ना फिर से इधर
आपने पहले 312 बताया
312 की बताई थी में अन्य कर्मों की बात वहां नहीं थी ना नहीं 300 इतना आगे नहीं था 12-13 में ही है सब क्योंकि 311 में तो लोभ का बताया था और इसमें अन्य कर्मों का बताया इनका यह गुणश्रेणी आयाम उतरने वाले सूक्ष्म सांप्रदाय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरणी का मिलाया हुआ काल से किछु अधिक प्रमाण है पेज नंबर 270 गाथा 312 उतरने का विधान वहाँ तक है, यहाँ की गुण श्रेणी कितनी उसका ये है। अभी यहाँ पर अनिवृत्ति में प्रवेश करके नवे गुणस्थान का जो अभी लोक वेदक काल बाकी है उससे एक आवली प्रमाण ज्यादा अवस्थित गुण श्रेणी यहाँ पर करता है। ये बात 57 पेज पर इसमें आ गई जो हमने अभी पढ़ी थी। पहले तो सूक्ष्म सांप्राय का जितना काल था वहाँ तो कृष्टियों का अपकर्षण किया था और सूक्ष्म सांप्राय से एक आवली प्रमाण ज्यादा गुण श्रेणी की। नवे में आया तो नवे का जो 2/3 लोक वेदक काल बाकी था उससे एक आवली प्रमाण स्पर्धक वालों को अपकर्षण करके उसकी गुण श्रेणी बनाई और उसी समय बाकी जो पहले कृष्टि रूप थी रचना वो सारी स्पर्धक रूप हो गई एक आवली को छोड़कर। फिर माया वेदक काल में वो तो पहले वाली गुण श्रेणी रही ही, माया के भी उदय के समय से हो गए और लोक की भी बढ़कर सबकी समान हो गई। कितनी हुई?
माया
वेद प्लस एक आवली।
ऐसा ही मान में ले,
मान में भी ऐसा है। पहले लोभ की और माया की भी बढ़कर मान वेदक प्लस एक आवली प्रमाण हो गई। बढ़ने के लिए बीच में अंतर पड़ा है ना तो वहाँ निषेक रचना हो जाएगा। सेम है ना, बढ़ता है ना, क्योंकि उसमें तो ऊपर तो अंतर पड़ा है इतना था, अभी मान का माया का शुरू हो गए तो इसका भी बढ़ा, इसमें भी ऊपर से निषेक बने ना यहाँ, इसका भी बढ़ा। अंतर में बहुत स्पेस पड़ी है तो वहाँ और नए ये सेम था। अभी मान के सॉरी लोक के टाइम सेम था तीनों लोक का, फिर माया के टाइम बाद में जब मान का आया तो मान की तो गुण श्रेणी थोड़ी बड़ी थी तो इसकी भी बढ़ गई। जब मान का नंबर आया तो उसके समान सबकी हो गई, क्रोध का नंबर आया तो उसके समान सबकी हो गई, परंतु अभी वो सबकी गलित अवशेष हो जाएगी, अब अवस्थित नहीं रहेगी। पहली स्थिति कहेंगे तब तक क्रोध का वेदक शुरू हो जाएगा तब जाके अंतर को पूरेगा। ये इतना इतने प्रोसेस है, इतना कंफ्यूजन है ना। आपने सब निकाला है? तो मैंने तो मेरे ट्रांसलेशन में से पढ़ा अच्छा हो, मेरे एक भूल भी निकली उसमें से कि जो प्रूफ में रही गई थी। अब यहाँ हम 63 पे नहीं, अपना पेज नंबर 68 पर था। अब हम 67 पेज पर देखेंगे। पहले 67 से भी 66 में देखो, यानी क्रोध का अपकर्षण करके नीचे से दूसरा सूत्र पेज नंबर 66 निकाला देखो। तदनंतर समय में, यानी अभी मान वेदक हो गया ना, उसके पश्चात के समय में तीन प्रकार के क्रोध का अपकर्षण करके क्रोध संज्वलन की उदयादि गुणश्रेणी करता है। उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी रूप से निषेक रचना होती है। अब तक वो वहाँ क्रोध के कुछ निषेक थे ही नहीं, अब नए बने। तथा दो प्रकार के क्रोध की उदयावली के बाहर गुणश्रेणी निक्षेप करता है। अब आगे का प्रश्न सूत्र में, इस समय गुणश्रेणी निक्षेप कितना किया जाता है, तो उसका उत्तर में बताया था 67 पेज पर पढ़ रही हूँ पहली लाइन। जिस प्रकार लोभादि प्रकृतियों का आकर्षण करने वाला, यानी लोभ का मान का माया का वगैरह, अपने वेदक काल से एक आवली अधिक गुण श्रेणी निक्षेप करता है, क्या इसी प्रकार क्रोध वेदक जीव भी गुण श्रेणी निक्षेप करता है क्या? नहीं, ऐसा इसका प्रश्न था पहले में पहले। तो उसके उत्तर में बताते हैं, प्रथम समयवर्ती क्रोध वेदक के 12 कषायों का जो गुण श्रेणी निक्षेप होता है वह शेष कर्मों के गुण श्रेणी निक्षेप के समान ही होता है। शेष का कितना, जितना भी शेष बाकी है उसके आवली निकाल जाता है, विशेष अधिक था ना। जब सूक्ष्म सांप्राय में बनाई थी तो सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण का मिलाए हुआ काल से कुछ अधिक था। जब अनिवृत्तिकरण में आ गया है, प्रवेश किया, तो अनिवृत्ति अपूर्वकरण के काल से कुछ अधिक था। अब अनिवृत्तिकरण का लोक वेदक मिट गया है, मान माया वेदक गया है, मान वेदक गया, अभी क्रोध का शुरू हो गया, तो अभी उसकी अन्य की गुण श्रेणी कितनी है? तो शेष जितनी बची उतनी है, तो इसकी भी उतनी हो जाती है। इसका अर्थ ज्ञानावरणादि की पहले से गुण श्रेणी का निक्षेप लंबा बड़ा जब लोभ का बनाया तो इतना था, माया का बनाया और बड़ा था, मान का बनाया और, अब जब क्रोध का बनाया तो अन्य के समान हो गया। 10वें से लेकर उसकी बनी थी, बड़ी बनी थी, इसमें तो अंतर था, इसलिए अंतर के नीचे छोटी छोटी गुण श्रेणी थी और उसका अंतर था ही नहीं, वहां तक उसकी गुण श्रेणी सूक्ष्म सांप्राय तक के काल को लेते हुए उतनी थी, है ना। अभी भी अंतर है, उसने गुण श्रेणी बनाई अन्य के समान, अभी अंतर को भी पूरेगा। अब 67 में नीचे कलाश का सूत्र, जिस प्रकार मोहिनी कर्मों को छोड़कर शेष कर्मों के गुण श्रेणी को शेष शेष में निक्षिप्त करता है, उसी प्रकार यहाँ से लेकर अभी मोहिनी के भी जो सभी जो अन्य 12 प्रकार के वहाँ गुण श्रेणी हो गए थे मुख्य, सभी में शेष शेष में निक्षिप्त करेगा। 12 कषायों की गुण श्रेणी को शेष शेष में निक्षिप्त करता है। अभी आगे पढ़ते 68 पर आएंगे। देखो इसमें 67 में लास्ट पैराग्राफ को लेते हुए पढ़ेंगे, यानी कंफ्यूजन कम होगा अपना, क्योंकि अंतर को कैसा पूरा जाता है वो दोबारा पढ़ेंगे। ज्ञानावरण नीचे से चौथी लाइन मिला, ज्ञानावरणादि कर्मों के समान यहाँ से लेकर 12 कषायों का भी दूसरे प्रकार का परिहार कर, यानी अन्य सब रूल आउट करके गलित शेष में गुण श्रेणी निक्षेप होता है, यानी बचे हुए में गुण श्रेणी निक्षेप होगा। देखो 167 पेज नीचे से चौथी लाइन, यानी अभी जैसे पहले ज्ञानावरणादि में गलित शेष गुण श्रेणी था, वैसे इसमें भी बना। अब नीचे से दूसरी लाइन, अब जिस समय इस प्रकार का गुण श्रेणी निक्षेप हो गया उसी समय इन 12 कषायों के अंतर को पूरता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यानी गुण श्रेणी के ऊपर अंतर था वो पूरेगा, खाली 12 कषायों में क्यों?
9 में क्यों?
अभी उसका उपशम कहाँ पूरा हुआ? अभी पुरुष वेद का कहाँ शुरू हो गया? अभी वेदों का उदय शुरू नहीं हुआ है, वो अभी उपशमित है। अभी 4 संज्वलन ही उपशम से छूटे हैं। तो यहाँ कहते हैं 12 कषायों के अंतर को पूरा था, अन्य का अंतर होगा उसका उपशम चल रहा है, उसकी बात नहीं चल रही। अब कहते हैं जिस कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़ा था, जिस कषाय के उदय से कहने का मतलब यह है कोई जीव क्रोध से चढ़ते, कोई मान से, कोई माया से, कोई लोभ से, तो चढ़ने समय भी उनकी अलग अलग रचना होती है। जो क्रोध से चढ़ता है वो क्रम से क्रोध के बाद मान, मान के बाद माया, माया के बाद लोभ की गुण श्रेणी होते होते चढ़ा था, और उतरते समय भी पहले लोभ का फिर वगैरह वगैरह। तो यहाँ तो अपने को क्रोध की बात ख्याल में रखनी है, जिस कषाय के उदय से चढ़ा उसका जब उदय शुरू हुआ है तब से लेकर वो अंतर को पूरा देता है। जब क्रोध की पूरी प्ररूपणा हो जाएगी तब बाद में वो अन्य की प्ररूपणा करेंगे, तब हम और उसको गौर से देखेंगे। जिस कषाय के उदय से श्रेणी पर चढ़ा था भी 68 पेज पर आना, उसी कषाय का अपकर्षण होने पर, अभी हमारा यहाँ का उदाहरण जो चल रहा है वो क्रोध के उदय से चढ़ा था, जब क्रोध का उदय शुरू हुआ तब उसका अपकर्षण होकर इस प्रकार का गुणश्रेणी निक्षेप और अंतर का भरना होता है। अब तक ये गुणश्रेणी निक्षेप छोटे छोटे थे, ये ऊपर सारे चारों संज्वलि उपशमित थे और ये नीचे अंतर था, तो पहले लोभ का गुणश्रेणी निक्षेप किया था, पुष्टि का था, फिर बादर लोभ का किया था, फिर माया का किया, फिर मान का किया, ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर क्रोध का करते समय उसका गुणश्रेणी निक्षेप भी होगा और ये अंतर को भी पूरेगा। ये अन्य ज्ञानावरणादि के समान था इसका भी, और यहाँ अंतर को पूरने का भी कार्य होगा। तो ये कैसे होता है वो बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर किंचित अंतर के भरने की विधि को बतलाएंगे। वह जैसे मिला ना 12 प्रकार के कषायों का अपकर्षण करके, यानी यहाँ जो अंतर भरेगा तो केवल क्रोध में नहीं, सभी अपना अपना अंतर भरते चले जाएंगे, सभी का अंतर भर जाएगा, यानी कंटिन्यूएशन में सारे अभी निषेक रचना हो जाएगी। तो कहते 12 प्रकार के कषायों का अपकर्षण करके, और हमने ये भी देखी थी जब आगे आगे वाला कषाय का उदय शुरू हुआ तो इनकी भी गुणश्रेणी बढ़ती गई, इसका उदय हुआ तो इसकी भी गुणश्रेणी और बढ़ी, जब इसका उदय हुआ तो सभी 12 कषायों की गुणश्रेणी तो समान हुई और उसके ऊपर अंतर को भी भरा दिया जाएगा।
अभी इसकी गुणश्रेणी तो अंतर के ऊपर अधिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण से भी बड़ी होगी जब लोग क्रोध का उदय हुआ तो।
हाँ, और उसी समय वो अंतर को भी पूरेगा, ऑलरेडी वो अंतर घटते गया था और अभी वो गुणश्रेणी के साथ उसका वो अंतर भी पूरा दिया जाएगा। देखो 12 प्रकार के कषायों का अपकर्षण करके उसी समय गुणश्रेणी निक्षेप करता हुआ, क्योंकि जो अपकर्षित द्रव्य है उसमें वो गुणश्रेणी रूप से रचना भी हो जाती उसी समय, उस समय क्रोध संज्वलन के थोड़े प्रदेश पुंज को उदय में देता है, उदय के समय में थोड़ा, उदय से लेकर है ना उदयादि गुणश्रेणी, उदय के निषेक से लेकर गुणश्रेणी रूप से रचना है। उसके बाद ज्ञानावरणादि कर्मों के पहले निक्षिप्त हुए गुणश्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को देता है, तदनंतर ऊपरी मंतर समय में, ऊपरी मंतर समय है गुणश्रेणी के ऊपर अंतर शेष है, यहां तक तो असंख्यात गुणा दिया ना और ऊपर अंतर है अभी, अब यहाँ नए निषेक भी तैयार हो गए। असंख्यात गुणे दिया ना वहां तक, ऊपरी अंतर समय में, अनंत समय में, अंतर समय में ऊपर क्या लिखा है, उवरिम अंतर समय में, अंतर समय में एक बार असंख्यात गुणे हीन प्रदेश पुंज को निक्षिप्त करता है, क्योंकि यहाँ असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा इतना हुआ है, अब यहाँ तो असंख्यात गुणा क्रम से नहीं देंगे तो वहां निषेक रचना तो होगी, तो उसमें निषेक बनने के लिए परमाणु आवश्यक उतने दिए जाएंगे, यहाँ भी नए निषेक बने थे और वहां भी निषेक भी नया ही बन रहा है, तो ये गुणश्रेणी के अंतिम निषेक में जितना दिया है यहाँ कितना दिया जाएगा, असंख्यात गुणा तीन, ये बात ख्याल में आई। ये भी निषेक सब नए बने, अभी क्रोध के नहीं थे वो बने, वो कैसे उदय में सबसे अल्प और ऊपर अनंत असंख्यात गुणा क्रम से यहाँ तक दिए, यहाँ भी निषेक नया बना अंतर को पूरने के लिए, इसमें कितना दिया, असंख्यात गुणाहीन, असंख्यात गुणा रूप से नहीं, अभी वो तो मिट गया उसका, गुण श्रेणी तक ही असंख्यात गुणा दिया। तो एक बार असंख्यात गुणहीन प्रदेश पुंज को निक्षिप्त करता है, मिला पांचवी लाइन। उसके बाद अंतर संबंधी अंतिम स्थिति के प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर विशेषहीन प्रदेश पुंज को निक्षिप्त करता है। अब ये अंतर संबंधी अंतिम निषेध, विशेषहीन इन्हें एक एक क्षय घटता हुआ, बात ख्याल में आई यहाँ तेजल? बीच में अंतर था, गुणश्रेणी के बाद असंख्यात गुणाहीन एक निषेक में दिया, उसके ऊपर विशेषहीन क्षय घटते हुए कहाँ तक, अंतर को पूरा रहा था, अंतर के अंतिम निषेक तक विशेषहीन दिया। तदनंतर द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में असंख्यात गुणहीन प्रदेश पुंज को निक्षिप्त करता है। अब ये जो द्वितीय स्थिति में जो है वो भी इसके साथ ही लगा हुआ है, परंतु बात क्या है, यहाँ तो इतना दिया, ऊपर तो थोड़ा कम दिख रहा है, थोड़ा कम, परंतु यहाँ ऑलरेडी निषेक थे। यहाँ तो पूरा निषेक, अंतर में पूरा निषेक बनने के लिए जितना द्रव्य दिया, ऊपर चय घटते क्रम से देने के लिए साइड में इतना ही दिया, तो वो कितना हुआ, असंख्यात गुणाहीन। दिखने के लिए गुण श्रेणी के ऊपर पूरी एक गोपुच्छा दिखेगी, परंतु अंतर में यहाँ अंतिम निषेक में जितना दिया है उसके द्वितीय स्थिति के पहले निषेक में असंख्यात गुणाहीन दिया, क्योंकि वहाँ निषेक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है वहाँ।
सर आगे हमने इसे पढ़ाने के क्रोध के पूछे, उदय के प्रथम समय में जो गुण श्रेणी रूप रचना हुई वो अन्य कर्मों के समान हो गई, गुण श्रेणी रचना
तो यहाँ पर बाकी सब
नहीं, अनिवृत्ति कर अन्य कर्म मीन्स
वर्णावरण दशा,
हाँ तो उसकी गुण श्रेणी कितनी थी, अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण और विशेष अधिक थी। तो यहाँ पे जो ये अंतर की बात में जो असंख्यात गुणहीन दिया वो दूसरी गुण श्रेणी होगी,
ये गुण श्रेणी कहाँ है, ये ऐसी है गोपुच्छा है,
नहीं तो गुण श्रेणी यहाँ पे कितनी बनी,
ये गुण श्रेणी यहाँ तक बनी,
नहीं वो तो अनिवृत्तिकरण प्लस अपूर्वकरण, हाँ तो बैलेंस अधिवृत्तिकरण का काल प्लस अपूर्वकरण,
हाँ तो वो इतने में समाप्त होने वाला है बैलेंस काल,
नहीं वो अपूर्वकरण का काल तो जितनी स्थिति में जाएगा ना अभी,
नहीं गुण श्रेणी से भी थोड़ा कम है शेष अनिवृत्ति और अपूर्वकरण का काल,
तो अंतर भी है वो काल,
अंतर उसके ऊपर है। देखो ये जो क्रोध के समय में जितना आकर्षण हुआ उसकी रचना कैसे हुई, तो उसकी रचना उदय के समय से लेकर असंख्यात गुणा दी। अब जो यहाँ अंतर का था, अंतर के निषेक में, समय छोड़ो, अंतर के निषेक में वो निषेक कहाँ है, ऊपर के समय में पड़ा हुआ है, अंतर वाला निषेक जो है पहला, उसमें असंख्यात गुणाहीन द्रव्य दिया, दिया जाने वाले द्रव्य की बात है, फिर कम क्रमहीन से दिया कहाँ तक, अंतर पूर्णे तक, द्वितीय स्थिति के पहले निषेक में कितना दिया, फिर अनंत असंख्यात गुणाहीन दिया, और फिर ऊपर एक समय में क्रोध, हाँ क्रोध के उदय के पहले समय में, और फिर और उसमें हर बार दिया जाएगा, हाँ अनंतर समय जो है, हाँ ऊपर का निषेक लेना, उसमें उस समय में स्थित निषेक, अंतर समय में ने अंतर संबंधी पहला निषेक,
द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में असंख्यात गुणहीन प्रदेश,
वो तो आगे लिखा है, उनका पहला प्रश्न अलग था। देखो ऊपर से जो पांचवी लाइन में अंतर समय में लिखा है ना, उसका अर्थ है अंतर संबंधी प्रथम निषेक, वहां लिख के रखो, अंतर समय में एक बार लिखा है उसका अर्थ क्या, अंतर संबंधी प्रथम निषेक में ये निषेक रचना नहीं चालू हो गई। अभी तक तो गुण श्रेणी रूप से असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, फिर उसके ऊपर अंतर वाला पहला निषेक, उसमें असंख्यात गुणाहीन, उसके बाद अंतर संबंधी अंतिम स्थिति के प्राप्त होने तक। यहाँ बराबर लिखा अंतर स्थिति यानी अंतर के जो निषेक है, अंतिम निषेक यानी द्वितीय स्थिति के पहले निषेक से नीचे का, उत्तरोत्तर विशेषहीन प्रदेश पुंज को निक्षिप्त करता है, देता है, क्योंकि वहां सारे निषेक नए बनने थे। तदनंतर द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में, ये बात क्लियर हुई, वहां ऑलरेडी निषेक था तो उसको गोपुच्छा बनाने के लिए साइड से थोड़ा दिया
असंख्यात गुणाहीन,
तो वहां असंख्यात गुणाहीन प्रदेश पुंज को निक्षिप्त करता है, ये इसको कहेंगे दिया द्रव्य। और जो फाइनल दिखाई देगा वो तो गुण श्रेणी के बाद पूरी एक गोपुच्छ दिखाई देगी, परंतु ये जो मैंने लाल बताया है बीच में ये ऑलरेडी थे वहां पर द्वितीय स्थिति में, और व्हाइट जो बताया वो अभी नए बने हैं, तो जो व्हाइट में दिया था और ये लाल के बाजू में जो व्हाइट दिया था वो असंख्यात गुणाहीन दिया और ऊपर विशेषहीन क्रम से दिया जाएगा, ये दिया जाने वाला द्रव्य। फाइनल रिजल्ट कैसे दिखेगा, उदय के समय से लेकर असंख्यात गुणा दिखाई दे रहा है, दृश्य द्रव्य में यहाँ फिर भी असंख्यात गुणाहीन दिखाई देगा और ऊपर विशेषहीन से घटते गोपुच्छा दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, अंतर से लेकर गोपुच्छा एक होगी। कब तक दिए जाएगा, तो लास्ट में एक कावली छोड़कर जिसको अति स्थापना वाली कहते हैं, यानी हर एक निषेक का माल अपने अपने नीचे सर्वत्र डिस्ट्रीब्यूट होगा एक आवली छोड़कर, अंत के वो फाइनल आवली कहलाएगी, उसमें ऊपर से कहीं से माल नहीं आता, उनका माल नीचे चला जाता है। अभी नीचे से मैं एक तीन चार पाँच छः छठी लाइन पढ़ रही हूँ, उससे आगे अपने अपने अपकर्षित प्रदेश को अति स्थापनावली नहीं प्राप्त होती, वहां तक सर्वत्र विशेषहीन प्रदेश पुंज को ही निक्षिप्त करता है। ख्याल में यहाँ विशेषहीन वाली ऊपर निक्षिप्त करेगा। इसी प्रकार यहाँ पर शेष कषायों के अंतर पूरण की विधि जाननी चाहिए। यहाँ क्रोध की बात बताई है, सब में ऐसा ही समझ है। पुरुष वे स्त्री वे इसको अभी नहीं लिया उन्होंने, वो अभी बाकी रखा है। शेष कषाय ने बारह कषायों में से शेष कषाय,
इसका उदय नहीं है।
क्रोध को बताया
मान में आया लोग का,
वो उदय के समय से लेकर है, बाकी जो ग्यारह है दो प्रकार के क्रोध, वो उदयावली के ऊपर से उदय के समय से तो थोड़ा हीन दिया जाएगा
और
ऊपर गुण श्रेणी रूप से दिया जाएगा, और फिर इसी क्रम से अंतर को उनको भी पूरा दिया जाएगा। तो कहते इसी प्रकार यहाँ पर शेष कषायों के, जब शेष कषाय कहते यहाँ नौ कषायों की बात ही नहीं उठाई, शेष ग्यारह कषाय अंतर पूरण की विधि जाननी चाहिए, क्योंकि उनके कथन में कोई भेद नहीं है, इतनी विशेषता है उनके प्रदेश पुंज का उदयावली के बाहर ही गुणश्रेणी निक्षेप होता है। जो निक्षेप जो दिया जाता है वो उदयावली के बाहर दिया जाता है, उदयावली में थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, गुणश्रेणी रूप से नहीं दिया जाएगा, ऐसे यहाँ कहना चाहिए। सात नौ कषाय स्त्रीवेद और नपुसक वेद में से भी यथावसर अपने अपने अंतर को पूरते समय, यानी इस समय वो नहीं पूरे जा रहे, अपना अपना अंतर पूरते समय इसी प्रकार निषेक प्ररूपणा करनी चाहिए। निषेक प्ररूपणा इसी प्रकार से होगी उनमें भी, यानी अभी उनमें अंतर चल रहा है, बारह कषायों का अंतर पूरा दिया गया है,
छह कषाय का पहले पड़ेगा पीछे पुरुष,
पर उसमें तो उदय नहीं है छह नौ कषाय में,
तो उसमें ही है।
हाँ उदय नहीं, फिर भी अंतर तो पूरा दिया जाएगा। सात नौ कषाय श्रीवेद और पुरुष वेद, सात नौ कषाय का एक साथ,
अच्छा पुरुष वेद का जब भी उदय होगा तब,
क्योंकि जिस क्रम से उसके उपशमित हुआ है उसके क्रम से उपशम छूटेगा,
उपशमित
वो बताएंगे ना आगे चल। तो ये अंतर संबंधी जो कुछ घोटाला हुआ था मेरा, तो वो तो पूरा हुआ। आपका पूरा हुआ कि बढ़ गया पता नहीं है। सही हुआ है ना, पूरा घोटाला हो गया क्या? अरविंद भाई कह रहे थे ना अंतर कहाँ है, अंतर कहाँ है, तो ये कंफ्यूजन हुआ था। अब यहाँ से आज का विषय चालू हो जाए, बहुत अच्छा है, ऊपर पढ़ेंगे। पढ़म समय कोह वेदगस्य बारस विहस्य विकसायस्य संकमो होदि। प्रथम समयवर्ती क्रोध वेदक के 12 प्रकार के कषाय का संक्रम होता है। अभी सभी आपस में संक्रमित हो गए, प्रोवाइडेड जो बंद होता है उसको संक्रमण चलेगा, क्योंकि अनानुपूर्वी संक्रम के कारण 12 कषायों का संक्रम होने में निषेध नहीं है। संक्रम सबका होता है, किसमें होता है उसमें लिमिटेशन। बंधता है क्रोध मान माया लोभ संज्वलन, और यहाँ है तो 12 है, यानी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का भी क्रोध हो या मान हो कुछ भी हो, वो तो अन्य रूप से उसके लोभ मान माया कहीं पर भी उसका संक्रमण होगा, परंतु वो संज्वलन में होगा क्योंकि संज्वलन बंध रहे हैं। ऐसा नहीं कि संज्वलन क्रोध का अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोध मान वगैरह रूप होगा, ऐसा उल्टा नहीं होगा, क्योंकि वो सारे अभी यहाँ उनके बंध नहीं, उनका बंध तो चौथे पांचवें में होता है, तो यहाँ जिनका बंध है उनमें संक्रमण होगा। किसका संक्रमण होगा तो 12 का होगा, किसमें होगा तो बंधने वाले में होगा, क्योंकि प्रतिग्रह जिसको प्रकृति एक्सेप्टिंग कौन है,
जिसका
तो जो जिसका बंध है क्रोध मान माया लोभ संज्वलन में लगा है। चार संज्वलन में संक्रमित हो गए, पर संक्रमण किसका किसका होगा? 12 का होगा। किस रूप से? आगे भी देखो, जो कोई भी किसी में भी चल जाते अनानुपूर्वी के अंदर किसका होता है। हाँ, वो संक्रमण चलता रहता है। ऑर्डिनरी भी मिथ्या तो गुणस्थान में भी सभी आपस में संक्रमित होते रहते हैं, वहाँ तो कषाय नौ कषाय दोनों का भी आपस में भी चलता है।
21 का होता है।
हाँ, वहाँ कोई पुरुषार्थ से होता है ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर संक्रमण में। आगे का सूत्र साधे ठिलिबंधो चौन्नम संजलनानम अठ मासा पड़िवुन्ना शेषाणम कम्मानम ठिलिबंधो संख्यत जानी वस्त्र सहस्त्राणि। उस समय चारों संजलनों का स्थितिबंध पूरा 8 मास होता है। जब हमने क्रोध का चढ़ने वाले के अंतिम समय में 4 मास देखा था, और क्षपक श्रेणी में 2 मास होगा क्योंकि मिनिमम स्थितिबंध हमने देखा था 2 वर्षों में, तथा शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण होता है। अब नीचे नीचे आ रहे हैं तो बढ़ते हुए संख्यात 1000, तो स्टेटमेंट तो यही होगा कथन, परंतु वो संख्यात 1000 में संख्यात का प्रमाण बढ़ता चला जाएगा। चढ़ने वाले अंतिम समयवर्ती क्रोध वेदक से संबंध रखने वाले स्थितिबंध को देखते हुए दूने स्थितिबंध की सिद्धि यहाँ पर बिना प्रतिबंध के उपलब्ध होती है। अब यहाँ जो लिखा है ना, उतरने वाले का काल बड़ा है, लब्धि स्थान में चढ़ने वाले का बड़ा कहा है? हाँ, मुझे भी वो अवतरक से आरोह, हाँ कितना स्पष्ट शब्द में यहाँ लिखा था ना, बड़ा ऐसा लिखा है, यहाँ उल्टा लिखा है। मुझे भी आश्चर्य लगा, उसका काल बताया था यहाँ,
पता है मैं निकाल सकती हूँ।
देखो पेज नंबर 274 गाथा 316 की टीका में लिखा है, आरोहक, आरोहक करते चढ़ने वाला, आरोहक के लोग वेदक काल तय यानी उस काल से, अवरोहक का लोग वेदक काल किंचित न्यून है। ऐसे ही माया वेदक कालादिकिनी विषय किंचित न्यूनता जाननी, जिस कषाय का जेता उदय काल विषय उदय का भोगना है उसका प्रमाण उसका वेदक काल जानना। अभी ये पूर्ण चढ़ने वाले का विशेष अधिक लिखा है,
तो अभी हमने तो
चढ़ने वाले का विशेष अधिक लिखा है, कल हमने उतरने वाले का विशेष अधिक देखा ना, 132 में ये आगे कल हमने पढ़ा वो देखो ना, पहले उसके बाद करेंगे। देखो 60 पृष्ठ पर इतनी विशेषता है, नीचे से 1, 2, 3, 4, 5 लाइन, चढ़ने वाले के लोग वेदक काल विशेषहीन जानना चाहिए। अभी हमने उतरने वाले की विशेषहीन देखा ना, अभी क्या पढ़ा है?
तो आप वेदक काल की बात हो रही है, गुणस्थान की बात नहीं हो रही ना?
कहाँ है गुणस्थान की बात मैंने की?
अच्छा।
यहाँ भी वेदक काल की बात है, वहाँ भी वेदक काल की बात थी। देखो नवरी चढ़मानस लोभ वेदगद्धा विशेषहीना दत्थ हुआ चौवासी मध्यान्ह मेदेनमेव चरमाणो दरमाणेषु पौत्य अभुगत माधव। आपने कहा
132
में? हाँ तो वहाँ पर देखेंगे ना सही कौन सा है।
नहीं यहाँ पे भी गिरने वाले जिनका अनिवृत्ति का असंख्यात गुण है, इसे ही बताए ना 132 में।
चढ़ने वाले से गिरने वाले को हमको कंपेयर करने, नहीं ये तो अलग बात है। यहाँ पर ये तो पहले से लोभ वेदक से माया वेदक काल विशेष अधिक हो विशेष अधिक है, परंतु चढ़ने वाले से गिरने वाले का मैं मुझे क्या कहना ख्याल में है ना बात। पेज 60 पर है ये।
तो वेदक काल के वेदक काल का बात कर रहे,
यानी चढ़ने वाले का अपना अपना काल से उतरने वाले का अधिक है ऐसा लिखा है। हाँ। हाँ और अभी दिक्कत, और हमने अभी जो पढ़ा था पेज नंबर 274 हाँ वहाँ किंचित न्यून कहा है, अवरोह कहने उतरने वाला है ना, आरोह कहने चढ़ने वाला, तो वहाँ चढ़ने वाले से उतरने वाले का किंचित न्यून कहा है और यहाँ किंचित अधिक कहा है, यानी उसमें से अभी कौन सा लेना, वो तो जो ऐसा लिखा है ना सेम टू सेम उसमें लिखा होगा, ये जो वहां से छपी है ना आगाज से उसमें सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जो इसमें लिखा है वही वहां पर लिखा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ ये वाले गाथा 316 की टीका, आरोहक के लोभ वेदक काल का कालतय अवरोहक का लोभ वेदक काल किंचित न्यून है। ऐसे माया वेदक कालादिक निविषय किंचित न्यूनता जाननी। अभी संस्कृत में अयम विशेष आरोहकस्य लोभ वेदक कालाद अवरोहकस्य लोभ वेदक काला किंचित न्यून इति ज्ञातव्यम्। एवं सर्वत्र माया वेदकादि कालेषु अपि आरोहक कालाद अवरोहकस्य किंचित न्यूनता द्रष्टव्या।
तो मुनि के लिए चढ़ना आसान है, उतरना मुश्किल है।
अरे
नहीं, मुनि के लिए, क्योंकि चढ़ने का काल कम बताया है, उतरने का ज्यादा बताया है।
इसमें उतरने का कम बता रहे हैं, यहाँ
यहाँ
पे
या, या, ये पुस्तक
ये उतरने का कम बराबर लगता है।
नहीं, वे तो मुनि की अपेक्षा सोच रहे हो कि उनके लिए चढ़ना आसान है, उतरना मुश्किल है।
मुश्किल और आसान की क्या बात है।
माँ बंदे हो,
माँ बंदे और कुछ है? जरा देख लो,
15 बुक कितना दस कितना 12 हाँ साल पूरा
क्या कहते हैं जुदे जुलाई तक का? हाँ, कहाँ जाने वाले मालूम नहीं, आगे का पर्याय का मालूम नहीं किधर है। कौन कौन आने वाले बोलो। साधे चालू रखेंगे।
हाँ, उधर आने लिए वांदा नहीं है।
मोक्षा को पूछ के आओ।
नहीं नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। तो वो जो अपनी
याद है पर है। हाँ हाँ, चलो ये बीच में मुझे डिफरेंस लगा, इसलिए कल ख्याल आया कि हमने कल ही पढ़ा था ना इसको। उतरने वाले का ज्यादा होता है, और यहाँ लिखते हैं किंचित न्यून है करके। कुछ नहीं हुआ, हाँ ऐसा कहा, हाँ ऐसा कहा, इतना ही कहेंगे अभी तक तो। और कहीं तीसरी पुस्तक कुछ आएगी या अल्प बहुत वो कहीं, इसमें भी अल्प बहुत में होगा जब अपना नंबर आएगा ना। पीछे तो अभी लिख के रखा है उसके संबंध में प्रश्न चिन्ह, कभी उसका सोल्यूशन मिलेगा तो मिलेगा। क्योंकि वो प्रश्न भी ख्याल नहीं रहते ना, बाद में भूल जाते हैं कहाँ आए थे हम। ओ 69, मेरा कहाँ हो गया। हाँ, पूरा 8 मास होता है वो, देखा ना हमने शेष कर्मों का संख्या 1000 वर्ष।
तीसरी लाइन में आते
हाँ, देखो चढ़ने वाले से उतरने वाले का दुगुना होता है। अब यहाँ से सेकंड लाइन पढ़ रही हूँ मैं, बराबर। हजारों स्थिति बंधों के व्यापार द्वारा, इसका अर्थ समझते हैं,
हजारों अंतर्मूर्त चलेगा,
यानी एक स्थिति बंध विशिष्ट प्रमाण लेते हुए एक अंतर्मूर्त चलेगा, फिर बढ़ता हुआ, क्योंकि अभी बढ़ रहा है। ऐसे हजारों चले जाने के बाद अंतर्मूर्त काल नीचे उतरे हुए, ये हजारों अंतर्मूर्त हुए फिर भी वो एक ही अंतर्मूर्त चल रहा है विशिष्ट पर्टिकुलर, तो इतना काल नीचे आ गया। अभी जीव के तदनंतर समय में 7 नौकषायों का आकर्षण करेगा कि इस अवस्था के मध्य में विद्यमान होते हुए जीव के, यानी अभी 7 नौकषायों का आकर्षण नहीं किया है, अभी करेगा, वहां तक पहुंचा है। तो अपकर्षण करने के पहले वहाँ का जो उसका स्थिति बंध जो कुछ है, इस अवस्था के मध्य में विद्यमान हुए जीव के उस काल में मोहिनी कर्म की विवक्षा से अंतिम समय में चार प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव के ये अंतिम समय क्यों कहा? हाँ नितिन भाई, प्रेरणा बिन आप कहेंगे? अभी चार संयोलन का बंद होने का अंतिम समय, जब पुरुष वेद का उदय चालू हो जाएगा तो पांच का बंद चालू हो जाएगा, तो चार का बंद होने का अंतिम समय, क्योंकि सात नौकशायन का अपकर्षण होगा, होगा यानी उसका उदय भी चालू हो जाएगा पुरुष वेद का, तो छह नौकशायन का भी उदय होगा कि नहीं होगा? सात का अपकर्षण एक साथ हुआ ना, तो वो छह नौकशायन का यहाँ उदय होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं होना चाहिए, क्यों? हाँ उदय की विच्छुति आठवें में हो गई है, नवे में उदय नहीं होता। आप पढ़े शाम को भी उदय की विच्छुति हुई ना अपनी, तो अंतिम समय में यानी चार संज्वलन के बंद का अंतिम समय वो तो बेन कैसेट पर सुनती है, ये जो हम बंद विच्छित्ति उदय विच्छित्ति सीखे ना वो जहां तहां आपको ख्याल में रहना चाहिए, क्योंकि नवे में उसका उदय है ही नहीं है, तो यहाँ तो पुरुषवेद का उदय होगा और बंद पांच का चालू हो जाएगा, यानी चार संज्वलन के बंद का अंतिम समय। अंतिम समय क्यों कहा? इसके आगे पांच का बंद होगा, ये चार के बंद का अंतिम समय। जीव के प्रतिपादन द्वारा वहां होने वाले स्थिति बंध के प्रमाण का निश्चय करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार हुआ है। सूत्र पढ़ेंगे, एदेन कमेण संखेज्येषु छिदिबंध सहस्येषु गदेषु, ये जब से वो चार संयोलन का पूरा आठ मास होता था तब बढ़ता 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 यहाँ तक आए, तो कितने संख्या हजार छिदिबंध चले गए। मोहनीयस्य चरिम समय चौविह बंधगो जादो तादे मोहनीयस्य छिदिबंधो चतुष्षठी वस्साणि अंतो मुहूर्त ऊणानि शेषाणम कम्माणम छिदि बंधो संख्य जानी वस्त्र सहस्राणि। इसका अर्थ देखें, इस क्रम से संख्यात हजार स्थितिबंधों के गत हो जाने पर यानी बढ़ते 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 अंतिम समय में मोहनीय कर्म का चतुर्विध बंधक हो जाता है। चतुर्विध ने चार, हाँ चार संयोलन का, उस समय मोहनीय का स्थितिबंध अंतर्मुहूर्त कम 64 वर्ष प्रमाण होता है। आठ मास से बढ़ते हुए विशेष अधिक बढ़ता गया ना अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त, तो कितने संख्यात हजार बढ़ गए तब जाके 64 वर्ष का हो गया। एक अंतर्मुहूर्त से वर्ष का होने के लिए भी कितना समय गया, आठ मास से एक वर्ष होने के लिए। तथा शेष कर्मों का संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है, यह अंतर्मुहूर्त कम बताया, जब पुरुष वेद का उदय चालू हो जाएगा बंद चालू हो गया तब इसका 64 वर्ष हो जाएगा। चढ़ने वाले प्रथम समयवर्ती क्रोध उपशामक के चढ़ने वाले की बात करें, वो पहला समय लिया, यहाँ क्रोध के उदय वाला अंतिम समय लिया, तो प्रथम समयवर्ती क्रोध उपशामक के अंतर्मुहूर्त कम 32 वर्ष प्रमाण चार संज्वलन के स्थितिबंध से, यहाँ पर दुगुना स्थितिबंध हो गया, तथा इसके शेष कर्मों का भी उनके प्रतिभाग के अनुसार यानी यथा योग्य संख्यात गुणा संख्यात हजार वर्ष प्रमाण स्थितिबंध हो गया, यह इस सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। इस प्रकार पुरुष वेद का बंध प्रारंभ होने के पूर्व अंतिम समय में जानना चाहिए। इस प्रकार चार प्रकार का बंध करने की अवस्था में विद्यमान जीव के स्थितिबंध के प्रमाण का निश्चय करके अब तदनंतर समय में पुरुष वेद का बंद और उदय प्रारंभ होने के प्रथम समय में, यहाँ उदय शुरू होगा उसी समय से नया बंद भी शुरू होगा, पांच प्रकार के मोहनीय कर्म का बंद करने वाला हो जाता है। अब तक चार प्रकृति का बंधक था, अभी पांच का हो गया। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, तदो से काले पुरुष वेदगत बंधको जादो, पश्चात अनंतर समय में पुरुष वेद का बंधक हो जाता है। यानी चार संज्वलन का बंधक तो चल ही रहा है, पुरुष वेद का भी बंधन चालू हो जाता है, क्योंकि उसी समय अपगत वेद पर्याय का क्षय हो जाने से। ये कौन सी पर्याय है नितिन भाई, तेजल आपको पता है? नहीं, अपगत वेद किसको कहते हैं बोल? हाँ, वेद नहीं रहा वो अपगत वेद। अभी क्या होगा, अपगत वेद नहीं रहा, यानी वेद रहित बना नहीं रहा, यानी वेद सहित हो गया, यानी सवेदी हो गया, उसका उदय भी शुरू होगा बंद भी चलोगा। तो अपगत वेद पर्याय का क्षय हो जाने से सवेद भाव में विद्यमान हुए, सवेद भाव चालू हो गया, सवेद पर्याय चालू हो गए। पहले अपगत वेद ही था, अब वेद सहित हुआ। उस जीव के पुरुष वेद का बंद होने के प्रति कोई विसंवाद नहीं पाया जाता, यानी उसका बंद चालू हो जाता है। इसी समय पुरुष वेद के साथ छह नौकषायन के उपशम भाव का क्षय हो जाने, वो उपशमित हुए थे उसका क्षय हो जाने से अनुपशम अवस्था में, यानी वो कर्णों का उपशम था वो अनुपशम हो गया, तो क्या शुरू हुआ? संक्रम, अपकर्षण आदि का संभव तथा अंतर का भरना और गुणश्रेणी निक्षेप विशेष, ये कार्य एक साथ प्रवृत्त होते हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। यानी पुरुष वेद और छह नौकषा एक साथ अपकर्षित हो गए। हाँ देखो, संक्रम हुआ, अपकर्षण हुआ, आदि में क्या क्या हमने देखे थे, जो बंद हुए वो भी चालू हो गए, निदत्ती निकाषित पना वो भी सब सब ले लेना, उसमें जो कर्ण बंद हुए थे वो शुरू हो, केवल यहाँ उदय उदीर्णा वाला नहीं होगा। उदय को तो हमने आठ में गिना ही नहीं था, उदय और सत्ता को छोड़कर बाकी आठ गिने थे, तो उदीर्णा नहीं होगी क्योंकि उदय नहीं है, परंतु अपकर्षण तो है, तब जब इसकी भी गुणश्रेणी बनेगी, जो है अंतर चल रहा था अब तक, तो इसकी भी प्रथम स्थिति बनेगी, पहले गुणश्रेणी बनेगी। गुणश्रेणी कैसे बनेगी, ऊपर से अपकर्षित होकर आएगा, इसका भी संक्रमण होगा अन्य में, नौ कषाय वो आपस में संक्रमित होते हैं, तो बंधने वाले कौन है, पुरुष वेद है, उसमें संक्रमित हो जाएगी, और क्रोध में भी संक्रमित हो जाएगी, क्रोध मान माया लोक संज्वलन में बंधने वाले पांच है ना, उसमें इनका संक्रमण होता है, इनमें अन्य का नहीं होगा क्योंकि इनका बंध नहीं है, इनका अन्य में हो जाएगा, तो संक्रमण चालू हो जाता है, अपकर्षण भी शुरू हो गया है, गुणश्रेणी की रचना भी हो जाएगी, उदय को उदयावली को छोड़कर ऊपर, और इनका भी अंतर पूरा दिया जाएगा, वहां भी निषेक रचना वगैरह होगी, तो ये सभी करण चालू हो जाएंगे, कार्य शुरू हो गए, करण जो उपशमित हो गए थे वो अभी प्रशस्त उपशम नष्ट होकर अनुपशम अवस्था चालू हो जाएगी। ये सूत्र कल ही पढ़ेंगे, बड़ा है, उसका अर्थ भी बड़ा है, कल ले लो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाई मस्तक नमो सदा।